خيراً. إن شاء الله تعالى شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا جی, یہاں پہ اب جو لوگ جن کا پہلے نہیں, جن سے میری زیادہ بات چیت ہوئی, میں ان سے جاتی. اچھا جی, روبینہ شیخ آپ بتائیے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے, کیا کیا جانا چاہیے؟
ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ اور باقی پانی سے
7 ٹائم. جی 7 ٹائمز اس کو دھونا ہے جی, اور اس میں ایک دفعہ مٹی سے دھونا ضروری ہے. شاباش, ہاں جی بالکل صحیح الحمدللہ. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کتے کا جوٹھا ہے وہ کس قدر نجس ہے کہ آپ کو اس کو مٹی سے دھونا. اب مٹی کے اندر اینٹی بیکٹیریل جو چیزیں ہوتی ہیں, آج پتہ چلتا ہے کہ مٹی کس طرح سے پاک کرتی ہے, جیسے کوئی بھی اور صابن اور یہ چیزیں نہیں پاک کر سکتی جیسے مٹی پاک کرتی ہے کسی بھی چیز کو. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس وقت, جس وقت کہ ان اس طرح کی باتوں کا کسی کو بھی علم نہیں تھا, اس وقت ہمیں یہ باتیں سمجھا دی. اور اتنی مطلب ان چیزوں کے اندر ہمارے لیے حکمت ہے. ہو سکتا ہے آپ تو اٹھا کے وہ برتن پھینک دیں, لیکن ہر کوئی ایک برتن کو پھینک نہیں سکتا. تو ان ایسی جب ہمیں ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے تو ہمارے لیے کتنا اس چیز کے اندر آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, اچھا جی, بیل ٹاپ پہ لوگوں کو سن رہا ہے نا, آواز آ رہی ہے الحمدللہ. اچھا جی, آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ یہ جو میں سوال کرتی ہوں نا, ان سوالوں کو آپ لکھ لیں اور ان کے جواب آپ لوگ بعد میں دیں. آپ کو خود پتا ہو, لکھ لیں کون سے پیج ہے لولو والمرجان کا, کہاں سے کہاں تک کے سبق کے یہ کوسچن آنسر ہیں. انہی کوسچن آنسر میں سے جب ہم آپ کا امتحان لیں گے تو انہی میں سے سوالات آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا جی, راحت امجد آپ بتائیے کہ اگر کتا ساتھ سے ٹچ کر کے گزر جائے تو کیا کرنا ہے؟ جی آپ راحت, آپ کو پوچھا کہ اگر کتا ساتھ سے ٹچ کر کے گزر جائے.
بتائیں ذرا پھر, میں کیونکہ مجھے ہی ٹرم نہیں پتا چلا گیا اسی لیے میں نے اپنا نام بھی نہیں صحیح سنا.
جی, کتا اگر سائڈ سے ٹچ کر کے, جیسے ہمارے پاس یہاں پہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ اب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ لوگ کتوں کو لے کر آئے ہوتے ہیں, اب وہ کتا اگر ساتھ سے ٹچ کر کے چلا جائے تو کیا ہوگا, کیا کرنا ہے ہمیں؟
ہمیں ہاتھ کو ٹچ کر کے چلا جائے؟
نہیں, کپڑوں کو مثلا ٹچ کر کے چلا گیا.
اچھا, کپڑوں کو ٹچ کر کے, تو ہاں تو وہی ہے کہ اس کو دھو لے. جیسے انہوں نے ہاتھ برتن کا انہوں نے کہا تھا نا کہ ایک دفعہ مٹی سے, حالت مٹی سے دھو لے, یا 7 دفعہ دھو لے, تو 7 دفعہ کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح کپڑوں کو بھی مطلب ایسے دھونا ضروری ہے, پانی صاف پانی سے دھو لے.
اچھا, اب آپ سنیے گا بھی, میں کسی اور سے بھی پوچھتی ہوں اور اس کے اندر مزید بات. شکیلہ آنٹی آپ بتائیں گی. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی, شکیلہ آنٹی آپ بتائیں گی. جی جی, میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر کتا ساتھ سے ٹچ ہو کے چلا جائے, گزرتے ہیں نا ہم پارک میں جائیں یا کہیں, کتا ہمارے ساتھ سے گزر کے چلا جائے, ہم کسی کے گھر جاتے ہیں ان کے پاس کتا ہے, وہ آپ کے قریب آ گیا گزر گیا, تو کیا کریں گے آپ؟
اگر گزر جائے تو کچھ نہیں, لیکن اگر کپڑوں سے ٹچ ہو جائے, اگر اس کا تھوک لگ جائے تو ہمیں اس کو دھو لینا چاہیے, اور اگر یوں ہی ٹچ ہو گیا تو تب دھونا
دھونا ضروری نہیں ہے. صحیح, تھوڑا سا اس کو, بالکل صحیح آپ نے کہا, تھوڑا سا اس کو مزید الیبوریٹ کریں گے. ام ملیحہ آپ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی استاذ, اس میں یہ تھا کہ اگر کتے کا جسم خشک تھا تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوتا, یعنی آپ اپنے کپڑے نہیں دھوئیں گے.
جی,
اگر اس کا جسم کچا تھا, کوئی بھی پانی وغیرہ لگا ہوا تھا, پھر دھوئیں گے.
بالکل صحیح, یعنی اس کے اندر دو چیزیں ہیں, دو باتوں کو آپ سامنے رکھیں گے اس کا. جیسے انہوں نے بتایا ابھی کہ دو چیزیں پہلے آپ دیکھیں گے, کتا کیا خشک ہے, بالکل ڈرائی ہے, جیسے اکثر ہم تو جب جاتے ہیں پارک وغیرہ میں ڈرائی ہی ہوتی ہیں, کم ہی ہوتا ہے کہ وہ کہیں پول میں سے نکلے ہیں, پانی میں سے نکلے ہیں, وہ پھر اپنے آپ کو جھاڑتے بھی ہیں, ان کے کبھی کبھی چھینٹے ہمارے پر پڑ جاتے ہیں. ठीक है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो बिल्कुल ड्राई है, अब वो ड्राई है और आपके पास से गुजर के चला गया कि आपके कपड़ों को टच हो गया, तो तब कपड़ा नापाक नहीं होगा, तब आप उसको धोने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर वो गीला है, ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से पानी वगैरह से निकलते हैं कहीं ऐसे, फिर उसके बाद वो आपसे टच हो गया, उसकी उसने अपने आप को झाड़ा, आपके ऊपर पानी गिर गया उसका, उसका लुआब आपको लग गया, उसका थूक आपको लग गया, जैसे ये बहुत ड्रूलिंग करते हैं कुत्ते, कई दफा किसी जगह लग जाता है, तो अब उसके बाद फिर आप उसको धोएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत दफा इसमें फिक्रमंद हो जाते हैं कि हम क्या करें, अगर हम इस तरह से कुत्ते का कुछ है तो फिर हम हमारा क्या होगा, हमारे कपड़ों का क्या होगा, और बहुत सारे लोग इतना ज्यादा फिर इसमें परेशान हो जाते हैं। और इफ देयर इज अ डॉग एट समवन हाउस कैन वी गो देयर, क्यों नहीं जा सकते आप, सीट सोफे पे भी बैठ सकते हैं बिल्कुल आप, लेकिन बात वो ही है कि अगर उसकी गीला कुत्ता यानी उसकी कोई सेक्रेशन आपको टच कर जाती है तो फिर मसला है, ठीक है। अच्छा जी, अब और किससे नहीं सवाल हुआ काफी दिन से, इफ्फत आलम, इफ्फत आलम आप बताइए कि कुत्ता घर में रखना कैसा है
जी?
कुत्ता घर में अगर रख लें तो कोई हर्ज तो नहीं है?
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
इस्लाम में कुत्ते को
जी
अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम में कुत्ते को घर में रखने की ममानियत है, इस्लाम में उसको पसंद नहीं किया गया।
अच्छा।
अगर आप कहते हो कि किसी आपके पास जमीने हैं वहाँ पर अपने फार्म वगैरह में रख सकते हो, लेकिन घरों में शहरों में नहीं रख सकते
जी। शाबाश, यानी आप इस तरह से जैसे पुलिस वगैरह के पास कुत्ते होते हैं वो रख सकते हैं, स्निफिंग डॉग्स होते हैं आपने देखा ये ड्रग्स वगैरह और इनको पकड़ने के लिए उन्होंने रखे होते हैं, इस तरह से और कोई मुजरिमों को पकड़ने के लिए वो रखे होते हैं, क्योंकि इनको स्मेल का बहुत ज़्यादा ये यानी सेंसिटिव होते हैं, ये बहुत जल्दी उसको उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन आपको पता है इसको घर में रखने का इतना सख्त गुनाह है, यहाँ पे तो नहीं वो हदीस आई लेकिन वैसे इसका इतना सख्त गुनाह है कि एवरी डे उस बंदे के नेक अमाल में से एक किरात के बराबर कम हो जाते हैं, और किरात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ओहद पहाड़ के बराबर है, तो कितना बुरा, क्योंकि बाज़ दफ़ा यहाँ पे बच्चे देखते हैं जब लोगों को कि उनके पास पपीज हैं डॉग्स हैं, बच्चे जिद करते हैं हमें भी डॉग चाहिए, तो आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि ये कोई छोटी बात नहीं है, कि इस्लाम हुक्म नहीं देता वो तो एक ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता चलना चाहिए कि इसकी यानी कराहत कितनी ज़्यादा है। एक तो नापाकी तो है ही, जाहिर सी बात है घर में रखेंगे कभी वो गीला होगा नापाकी होगी, लेकिन इसके अलावा गुना यानी गुना तो एक तरफ, इसके अलावा आपकी नेकी में से कितनी नेकी कम हो रही है, हर रोज कम हो रही है कुत्ता रखने की वजह से। इस चीज़ को बाज़ लोग नहीं इतना जानते, उनको नहीं पता होता, वो कुत्ता रख लेते हैं, उनको बस ये पता होता है कुत्ता निजस जानवर है चलो जी हमने नहीं रखना, लेकिन ये नहीं पता होता कि इतना सख्त इसका इसके ऊपर वईद है कि एक किरात के बराबर उसके नेक अमाल कम होते जाएंगे एवरी डे, तो ये इस चीज को भी जहन में रखना चाहिए। अच्छा जी, कुलसुम शेख आप बताइए कि अगर कोई बच्चा मस्जिद के कालीन पे पेशाब कर दे तो क्या उसका करना चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही कुलसुम। वालेकुम अस्सलाम जी जी।
हेलो
जी जी, अब आ रही है जी। अच्छा लाइव ब्रॉडकास्ट से भी मेरे ख्याल आपने ऑन किया हुआ तो वहां से भी आवाज आ रही है जी, उसको म्यूट कर दे। उसको म्यूट कर दे, कंप्यूटर को म्यूट कर दे और फिर फोन पे बात करें जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी।
आपने क्या मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मेरी आवाज नहीं शायद आपको गई?
नहीं आपकी आवाज नहीं आई कि अगर कोई बच्चा मस्जिद के कालीन पे पेशाब कर दे तो उसके बारे में क्या हुक्म है, क्या किया जाए?
उसके ऊपर अगर तो बच्चा दूध पीता है खाली, तो लड़के का है कि उस पर स्वामी का यानी छीटा मार दिया जाए, और ये लड़की के लिए नहीं है ये हुक्म। और अगर बच्चा यानी साथ फूड भी खा रहा तो फिर उसको धोना पड़ेगा ना।
हाँ, धोना पड़ेगा वो, तो क्या उसको किस तरह से धोया जाए?
उसको पानी बहाया जाएगा ना,
इतना बहाया जाए या ऐसी
अपनी मशीन? अगर बच्चे ने अगर जैसे आप उसने कारपेट पे अगर किया तो फिर आप उसको पानी के छींटे मारते हैं तो उससे वो पाक हो जाएगा ना।
हाँ, वो शीरखोर बच्चा अगर वो दूध पीता है लड़का, ठीक है, और अगर दूसरा बच्चा है या बच्ची है तो फिर क्या करेंगे वो उससे? आजकल देखिए वो वाले वैक्यूम्स भी आते हैं कि जो सक कर लेते हैं बिल्कुल, तो ऐसा हो जाए कि बिल्कुल उस पेशाब को सक कर लें, आप पानी बहा दें ऊपर कि बिल्कुल यानी उसका पेशाब का वहां पे कोई रह नहीं जाए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोग अपने फोन म्यूट कर, वो कंप्यूटर म्यूट कर देंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह मुझे आपकी आवाज आएगी। अमरिंदार आप बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बद्दू को पेशाब करते देखा था मगर सहाबा कराम को मना कर दिया कि इसको मत रोको, मस्जिद में पेशाब करना पूरा करना अलाउ कर दिया, क्यों?
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम।
जी उसाजा, उन्होंने इसलिए किया था कि इसमें हिकमत ये थी, एक तो अगर वो खड़ा होके उसको फौरन वहां से उठ जाता तो पेशाब के कतरे पूरे मस्जिद में फैल जाते, और दूसरा वो सेहत के लिहाज से भी मना था, और तीसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आराम से तसल्ली से उसके बाद हिकमत से समझा दिया, क्योंकि मतलब वो बद्दू भी था और सख्त दिल भी था तो उसकी नेचर समझते हुए भी।
शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा आपने कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया, कितनी प्यारी तालीम हमारे पास है ना। कभी कभी हम बच्चों को देखते हैं जिन बच्चों ने, अगर कोई किसी बच्चे ने डायपर नहीं पहना हुआ, पॉटी ट्रेन हो रहा है या कुछ ऐसी बात है, या कोई ऐसे इलाके में है जहाँ पे डायपर नहीं पहनते बच्चे, तो आप देखते हैं कि अगर कहीं पेशाब करते देखते हैं तो कितना एकदम शोर मच जाता है, हाँ पकड़ो उसको, देखो पेशाब, और उतनी देर में बच्चा एकदम अपना पेशाब रोक लेता। तो हम तो बच्चों को भी नहीं बख्शते, इतना हम हमारे अंदर टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में देखा, अगर खुदा ना खास्ता घर में ही कोई किसी के बच्चा कर दे तो क्या हालात हो उसके बाद, तो शायद उन लोगों को कभी इस घर में आने की इजाज़त ना मिले। मस्जिद में तो पता नहीं वो औरत की तो ज़िंदगी दूभर हो जाएगी जिसके बच्चे ने पेशाब किया होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े आदमी को भी देख के सुभान अल्लाह कितना बर्दाश्त सब्र, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक था कि उसको कुछ नहीं कहा, और उसके बाद इतनी आराम से उसको समझा भी दिया, कोई डांट नहीं है उसके अंदर, कोई मलामत नहीं है, कोई बुरा भला कहना नहीं है। तो सुभान अल्लाह कितने प्यारे हमारे नबी के अखलाक हैं, अल्लाह ताला हमें भी ऐसे अखलाक अता फरमाए और इतनी बर्दाश्त अता फरमाए कि हम लोगों की गलतियों के ऊपर उनको माफ़ कर सकें और उनके साथ हिकमत से मामला कर सकें। जी यास्मीन इकबाल आप बताइएगा कि मनी मजी और वदी में क्या फर्क है? जी यास्मीन, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह,
पेंटो की आवाज बंद कर दो जी। आपने मुझसे सवाल किया है कि
मनी मजी और वदी में क्या फर्क है?
एक तो शहवत से पहले अगर मर्द का पानी आता है उसको मजी कहते हैं, और शहवत पूरी होने के बाद जो पानी होता है उसको मनी कहते हैं, और चाय वगैरह पहले से जो मर्द का पानी आता है उसको मदी कहते हैं। इनमें तीनों में से मनी जो है वो नापाक होती है, उसका धोना जरूरी होता है।
शाबाश, आपने तो सारा ही जवाब दे दिया माशाल्लाह। इसलिए इन टर्म्स को हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि इनके अहकामात फ़र्क फ़र्क हैं, और इतनी ये अल्लाह ताला की हमारे लिए एक, जैसे हमने पढ़ा भी है ना कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ भेजा, तो ये अल्लाह ताला का एहसान है हमारे लिए, वाकई एहसान है, क्योंकि ऐसे अहकामात हम कैसे समझ सकते थे वरना। बाज़ दफ़ा ऐसे अहकामात आते हैं कि यानी सुभान अल्लाह हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी इसके अंदर हमारे लिए भलाई है, क्योंकि देखें वो चीज़ें जो नापाकी की हैं अगर वो हमारे ऊपर लगी हुई हैं उसके बाद हमारी नमाज नहीं कबूल होगी, ठीक है, अब नमाज नहीं कबूल होगी, हमारी इबादत नहीं कबूल होगी, हम नमाजों पर नमाजें पढ़ रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि इसके साथ हमने क्या करना, तो देखिए इसमें इन चीजों को समझाने में कितनी बड़ी हिकमत है और कितनी बड़ी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह अपने जो घर के अंदर की बातें हैं वो भी आगे किताबुल हैज है उसमें आ रही हैं। देखिए हम आम लोग हैं, हम आम लोग भी पसंद नहीं करते कि हमारी प्राइवेट जिंदगी किसी के सामने आए, ऐसा ही है ना, हमारे घर की बातें किसी को पता चले। और देखें ये एहसान अजीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत पे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जिंदगी के हर मामले में रहनुमाई फरमाई है, किसी में अंधेरों में भटकने के लिए बेसहारा नहीं छोड़ दिया, छोटे से छोटा मामला उसमें भी ठीक ठीक बातें बताई जो आम आदमी के साथ मुतल्लिक है, जो वो किसी और के सामने करना ना पसंद करेगा उसको भी उसमें भी रहनुमाई फरमाई। और ऐसी भी बातें हैं जो कि इंसान शर्माता है कि किसी से कैसे ये मसला पूछे, उसमें भी रहनुमाई फरमाई। हालांकि हम कभी भी वो बातें किसी के सामने नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह से जिंदगी सामने ना आती, जैसे हम किताबुल हैज में कुछ मसाइल पढ़ेंगे, हो सकता है आप लोगों को लगे अजीब, तो लेकिन अगर वो मामलात ना आते आपको कैसे पता चलता कि हमने इस मामले में क्या करना। तो शर्म शर्म के अंदर हम ना कभी किसी से पूछते ना इसके बारे में जानते और उल्टे सीधे काम होते रहते। और आज भी चूंकि ये चीजें आम नहीं है, लोग इतने ज्यादा नावाकिफ हैं हदीस से, इतनी ज्यादा जहालत है कि लोग उल्टे सीधे काम करते रहते हैं पूरी पूरी जिंदगी और उनको ये नहीं पता होता कि इसमें सही काम क्या है, सही तरीका क्या है, इसके अंदर क्या हमारी लिमिट्स हैं और कौन सी चीजें जो इस्लाम में जायज हैं। रिलैक्स अबाउट देम। जैसे एक वाकया मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात का बता दूं कि एक खातून के घर में गई तो उन्होंने जानमाज लाने को उनको बस कहा था, तो उन्होंने कहा मैं तो जानमाज नहीं ला सकती। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह लगी कि मैं तो इन मेरे अयाम चल रहे हैं नापाकी के। यानी आप इससे अंदाजा लगाइए कि हम किस कदर जाहिल हैं। और कोई छोटी बच्ची नहीं थी, वो बड़ी बच्चों वाली खातून थी। तो कहने का मकसद यह है कि हमें इन चीजों को आम करना है, हमें इन चीजों को समझना है। आगे किताबुल हैज आ रहा है और उसमें भी वो अहकामात हैं जो हम सब खवातीन से मुतल्लिक हैं, इसलिए हमारे लिए वो समझने इतने ज्यादा जरूरी हैं। आप ये देखें कि आप सुलेमान अलैहिस्सलाम से, हजरत सलमान फारसी से, सॉरी, उनसे अहले किताब ने बड़े तंजिया अंदाज में सवाल किया था कि सुना है आपका रसूल तो आपको रफा हाजत के तरीके भी सिखाता है, यानी एक तंज था ना। तो हजरत सलमान फारसी ने किसी किस्म की कोई इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की, ना कोई माजरत दी, जैसे आज हम तो बहुत शर्मिंदा से हो जाते ना। तो उन्होंने आगे से फरमाया कि हाँ आप बिल्कुल सही कहते हैं, बड़े एतमाद से बताया, आप बिल्कुल सही कहते हैं, बड़े फख्र से फरमाया, हाँ हमारा पैगंबर हमें हर बात की तालीम देता है, हत्ता के रफा हाजत के तरीके भी और आदाब भी सिखाता है। तो इस पर यहूद नसारा ने बड़ा मुंह सा बना के और वो चल दिए, क्योंकि ये चीजें हैं कि किसी मजहब में इतनी डिटेल में नहीं बताई गई, किसी मजहब में ऐसी रहनुमाई नहीं की गई। आपको इस पे फख्र भी होना चाहिए, खुश भी होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन हमें यहाँ तक रहनुमाई करता है। और सिर्फ रहनुमाई नहीं, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन तरीकों को, सीरत को, हदीस को अल्लाह ताला ने महफूज रखा, आज तक हम तक पहुंची। वरना ठीक है उस जमाने के लोग तो सीख लेते, लेकिन हम तक कैसे बात पहुंचती? तो अल्लाह ताला ने एक एक बात हम तक पहुंचाई। ये हमारे लिए कहना आसान है कि जो हम ये सोच लें, ये कह दें कि हाँ ये उनके हैज की बातें हैं, लेकिन सोचें हम जैसी खवातीन के लिए, जो हमारी तो कोई भी ऐसी हैसियत नहीं है, लेकिन हमारे लिए भी कोई अपनी हैज की बात किसी तक पहुंचे, हमें अच्छा नहीं लगता। और उम्महातुल मोमिनीन की एक एक बात आ रही है आप तक सिर्फ इसलिए ताकि आपको रहनुमाई मिले, आपको कोई मुश्किल ना हो, आपको मुश्किल से बचाने के लिए। तो ये एक एहसान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके घराने का, एक उनके सदका जारी है कि उम्मत की खवातीन उनसे सीखती रहेंगी। बात यही है कि अगर हम इन चीजों से आंखें बंद कर लें और ये सोचें हाय हमें तो बड़ी शर्म आती है, तो हमारी शर्म क्या उनकी शर्म से भी ज्यादा, हमारे अंदर क्या उनसे भी ज्यादा हया है कि हम इन बातों को सीखना नहीं चाहते, इनको समझना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे अंदर शर्म बहुत है। तो ये शर्म की बात नहीं है, इस चीज को सीखना समझना जरूरी है। अल्लाह ताला हमें इन जो सही तरीके हैं इनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सही इससे रहनुमाई ले सकें। اچھا جی، اگر استاذ ریڈی ہیں تو مجھے بتا دیں، ورنہ آگے جو سوالات ہیں پھر میں وہ آپ سے لوگوں سے پوچھ لیتی ہوں، چونکہ آواز نہیں آ رہی. اچھا چلیں، وہ ریڈی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ہمیں باقی جو سوالات ہیں اس سبق کے بھی رہ گئے ہیں، وہ ضروری ہیں، انشاءاللہ وہ نیکسٹ ٹائم آپ سے پوچھوں گی. اور آپ سے میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہی سوال آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ اس کی تیاری کر کے رکھیں. میں آپ سے وہ پچھلے سبق میں رہ گیا تھا مسح کے بارے میں، اور پیروں کے اوپر مسح کرنے کے بارے میں، کب تک کر سکتے ہیں ساکس کے ساتھ، کب تک کریں گے، اور کون سی ساکس پہ کر سکتے ہیں اور کون سی پہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سارے لوگ بہت سارا ایشو بناتے ہیں اس پہ کہ لیدر ساکس لے کر، اور اتنے تردد اور مشکل میں پڑ جاتے ہیں، لیدر ساکس خرید کے لے کر آتے ہیں وہ اور ان کے اوپر مسح کرتے ہیں. تو وہ ساری باتیں میں آپ سے پوچھوں گی، اس کو ریڈی کر کے آئیے گا، اور اس کے بھی جو کتاب الحیض کے احکامات ہیں ان کو بھی آپ ریڈی کر کے رکھیے گا. جہاں تک ہم نے آج کر لیا اس سے آگے کو بھی انشاءاللہ آپ نے تیار کر کے آنا ہے اگلی دفعہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک.